పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాబదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమ్నే గౌరస్తుతే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ తదాలయై కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ సర్వభక్తాయ నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత కంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి విశుభాన్సుతే ప్రణమామి హరి. హా దేవి కాకు భర గదగదయాద్యవాచ జాచే నిపత్త భోవి దండవత బుడ భటార్తి అస్య ప్రసాదమబుదస్య జనస్య కృష్ణ హరివితే తవ గణే గణన్ అంగశ్యామలింఛతాభిరభితో మందీకృతేందీ వరం జడ్డంజాగుడరోచి సంవిదతంగ పట్టంబరస్య బిందారణ్య నివాసినం శిథిలసద్దామాభిరామోదరం రాధాస్కంద నివేశితో జలభుజం న్యాయేం దామోహీన అపరాధలక్ష్యై చిత్వాస్య కామాదితరం కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్నా వృందే నమస్తే చరణం. యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహ కాతరయా జుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా సర్వోభిః సర్వభూతహృదయం మునిమాన్ తవైవాస్మి తవైవాస్మి న జిమామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధే తన్న మామచ. Like that. Bhagavad Samyata. Kal tak hum logo ne kuch kuch Vaishnav tattva, Vaishnavon ki mahima ityadi ke sambandh mein kuch kuch batlaya. आज हम लोग बृहद भगवतामृत से एक एक श्लोक का, सनातन गोस्वामी की टीका हम पाठ कर रहे हैं. सनातन गोस्वामी बृहद भगवतामृत के अंत में श्रीमद्भागवत और दूसरे भक्ति ग्रंथों से कुछ श्लोकों का समाहरण किया है और उसकी अद्भुत रसयुक्त टीका करते हैं. हम इसमें से कुछ पहले कर चुके हैं, आज इसके बाद से फिर आरंभ कर रहे हैं. धन्य आयम अद्य धरणी तृण विरुद्ध विरुधस्तत् पादस्पर्शो दुर्मलता करजाभिमृष्टा नद्दो अद्रय खगमृगा सदयावलोकय गो गोप्यो अंतरेण भुज अपि यत् प्रिहासि. साधारण इसका अर्थ यह है कि कृष्ण का बाल्यपन अब कुछ बीत चुका है, पौगंड में भी अब कुछ पौगंड से भी ऊपर उठकर युग वयसंधि में आ रहे हैं. अब किशोर थोड़ा थोड़ा किशोरावस्था उनकी आ रही है. उस समय में विभिन्न ऋतुओं में अपने सखाओं और गायों को लेकर वृंदावन के विशेष विशेष स्थलों में गोचारण के लिए जा रहे हैं। कभी भांडीर वन में, कभी कामे वन में, कभी खेलन वन में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में, इस तरह से कभी मधुबन में, ताल वन, कुमुद वन में प्रवेश कर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। उस समय में एक बार कृष्ण और बलदेव सखाओं को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किया। कृष्ण वहां की प्राकृतिक वहां का सौंदर्य देखकर बड़े उत्फुल्ल और आनंदित हो वो वृंदावन की शोभा का वर्णन करने लगे और इस तरह से वर्णन करने लगे बलदेव जी को देख करके मानो वो सब कुछ अपने लिए कह रहे हैं किंतु बलदेव जी को के लिए कह रहे हैं। ये वृंदावन की शोभा केवल तुम्हारी अब तुम्हारे अभिनंदन के लिए ये है, अपना नहीं नाम कह रहे हैं। अपने बहाने बलदेव जी के बहाने मानो ये उनसे बतला रहे हैं। देखो तो आज वृंदावन कैसा सुहावना लग रहा है। अभी शरद ऋतु का वर्णन किया था, शरद ऋतु में लताएं बढ़ जाती हैं, उसमें फूल आ जाते हैं, बड़ी सुंदर नदियां भी स्वच्छ हो जाती हैं, सरोवर का पानी भी स्वच्छ हो जाता है, मैला गंदा नहीं रहता, पशु पक्षी भी उत्फुल्ल होकर के उठते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, चंद्र की शोभा भी बड़ी निराली होती है क्योंकि धूल इत्यादि नहीं रहती, फूले काश सकल महिछाए, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, याद है, वर्षा ऋतु विगत हो गई, काश काश किसको कहते हैं, सफेद सफेद ये सब छा गए हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण जी वहां पर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, यहां पर बलदेव जी को कह रहे हैं, बड़ी सुंदर दृश्य हो गया, लताओं में फूल भरा है, पशु पक्षी चहकने लगे, न अधिक ठंडा न अधिक गर्मी। बलदेव जी कहते हैं देखो तो ये पेड़ों की शोभा, आज पेड़ हरियाले हो रहे हैं, इनमें फल फूल लदे हुए हैं, मानो बसंत ऋतु आ गई है। वृंदावन की समस्त ऋतुएं ही मानो बसंत ऋतु होती हैं। तो पेड़ कैसे उपकारी हैं, यदि किसी मनुष्य को होना चाहिए तो पेड़ जैसा उपकारी होना चाहिए, पेड़ से सीखो, पेड़ अपने लिए जीवित नहीं रहते, दूसरों के लिए जन्म लेते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, उनका पेड़, उनकी गुठली, उनका मंजरी, उनके फूल पत्ते छाल लकड़ी सब कुछ परार्थ के लिए होता है, दूसरों के उपकार के लिए होता है। देखो मनुष्य से तुलना करो और जीवों से तुलना करो, सभी लोग कुछ स्वार्थी रहते हैं, विशेष करके मनुष्य, जो मनुष्य पेड़ों की भांति दूसरों के लिए जीवता रहता है वह अजर अमर, वो वैष्णव है, वैष्णव के बिना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैष्णव लोग कृष्ण के लिए ही प्राण धारण करते हैं, जब कृष्ण के लिए प्राण धारण करते हैं तो सबके लिए हो जाता है, क्योंकि तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। इसलिए यदि किसी को जीवित रहना है तो पेड़ों से सीखें कैसे दूसरों के लिए उपकार किया जाता है। हम लोगों को भी, साधक को भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए उपकार करें। सबसे बड़ा उपकार क्या है? संसार में भगवान के विपरीत रहकर, विमुख रह करके जो लोग अपने सुखों में तन्मय हैं, भगवान क्या है, भक्त क्या है, ये कुछ नहीं जानते, भक्ति क्या है, उनकी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ देना, ये सबसे बड़ी दया है। इससे बढ़कर के और कोई दया नहीं है। उनका अंतर और बाहर दोनों एक होता है वैष्णव का। तो इसको पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। आज देखो गोवर्धन जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, हरियाली चारों तरफ में छाई, फूलों से सुगंधित हो रहा है, वायु भी सुगंधित चल रही है, शीतल मंद सुगंध चल रही है बयार। कहते हैं कि धन्य यम अद्य धरणी तृण बिरु तत्त इयम 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 मैंने क्या धरणी, आज ये धरणी धन्य है। धन्य मैंने किसको कहते हैं? धन से धन्य, जो धन से परिपूर्ण हो उसको कहते हैं धन। संसार में बहुत प्रकार के धन हैं, किंतु सबसे बड़ा धन क्या है? भक्ति धन, प्रेम। कृष्ण के प्रति यदि है प्रेम तो ये बड़ा सबसे धन है। धर्म क्या है? धर्म ही धन है। और सब प्रकार के धर्मों में सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षते, अधोक्षत कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वही सबसे बड़ा धन। मनुष्य मात्र के लिए, पशु पक्षी सब के लिए, जीव मात्र के लिए यही परम धन। जिसको धर्म रूपी धन नहीं है, भक्ति रूपी धन नहीं है, तो वो पशुओं से भी गए बीते हैं। आज ये पृथ्वी आज ही धन्य है। और तृण विरुध इत्यादि ये सभी धन्य है, किस लिए? उसी के लिए बात ला रहे हैं। धरणी आज धन्य हो गई। आज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं पाद स्पर्शो द्रुमलता करजाभिमृष्टा। आज धन धरणी धन्य है और इसके तृण गुल्म लताएं ये सभी धन्य है, क्योंकि कृष्ण का ये पदों को स्पर्श किया है, चरण कमलों का स्पर्श किया है। द्रुमलता करजाभिमृष्टा, धरणी पर अपने चरण रखते हैं, इसलिए धरणी के धरणी स्वयं और उसके ऊपर रहने वाले जो तीन छोटे छोटे हैं विरुद्ध हैं वो भी धन्य हैं। कभी कृष्ण का चरण कमल उनसे भी लग जाता है। द्रुमलता करजाभिमृष्टा, द्रुम जो हैं बड़े बड़े और उस पर चढ़ने वाली जो लताएं हैं करजाभिमृष्टा, उनके हाथों को स्पर्श करके आज धन्य। पैर नहीं लिखा क्योंकि बड़े बड़े ऊंचों को पैर रख स्पर्श करने का मौका कम मिलता है, इसलिए कृष्ण ने आज उनको अपने हाथों से स्पर्श किया। नद्यो अद्रयः, नद्यः अद्रयः खग मृगा, इनको कृष्ण के चरणों के भी स्पर्श नहीं और हाथों से भी इनका स्पर्श नहीं। नदी अद्र, अद्री माने पर्वत, खग पक्षी, मृगा, मृगा माने जितने हैं गाय और पशु जितने हैं सभी उसमें मृगा में आ गया। इनको क्या करते हैं? सदयावलोकई, जिनको हाथों से पैरों से स्पर्श नहीं कर सकते उनको दया, दया माने प्रेम, प्रेम से करुणापूर्वक नेत्रों से उनके तरफ में देखते हैं, अब आंखों से उनका स्पर्श करते हैं। जिनका पैर से नहीं हुआ उनको हाथ से, जिनका हाथ से भी नहीं हुआ उनको नेत्रों से स्पर्श करते हैं। बीच में कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके फिर कहते हैं गो गोप्यो अंतरेण भुजयो अपि जत श्रीहासी। और गोप्यः गोपियां अंतरेण भुजयो, किसी को पद से स्पर्श किया, किसी को हाथ से स्पर्श किया, किसी को अपने नैनों से स्पर्श किया, और इन गोपियों को अपने दोनों हाथों के अंदर में, भुजाओं के अंदर में क्या है, वस्त्र, उनके वस्त्र से स्पर्श किया। भुजो अपि अंतरेण जत स्पृहासी, जिसकी स्पृहा लालसा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं किंतु आज तक नहीं पाई, उन गोपियों को ये, इसलिए आज ये पृथ्वी धन्य है, इसलिए साधारण रूप में ये इसका अनुवाद है। सनातन गोस्वामी जी अब इसकी टीका कर रहे हैं, अब्द शब्द का प्रयोग क्यों किया, भगवान के भक्त लोग और भगवान के सब अवतार कोई भी हो, चाहे शुकर हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, बरा हो, निसिंह हो, परशुराम हो, राम हो, कल्कि हो, बलदेव जी हो, बुद्ध देव जी हैं, कपिल हैं, इत्यादि हैं, वो जन्म लेकर के आविर्भूत होकर के पृथ्वी का जरूर स्पर्श करते हैं। तो पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा बराह, चौथा नृसिंह जी, इसके बाद में पांचवा बामन। बामन भी पृथ्वी को मापा ना, पृथ्वी पर पैर रख करके तीन जग चले, तीन पैरों में सबको माप लिया, किंतु पैर उनका कहाँ होगा, पृथ्वी पर ना, पृथ्वी पर पैर रख करके माप रहे, और फिर उनको भी अपने माप लिया बलि को, इस तरह से पृथ्वी में पैर रख करके किया। विशेष करके बरा परिरंभरेण, बरा देवी जी पृथ्वी रसातल में चली गई हैं, प्रलय की बाढ़ में डूब गई हैं, और ब्रह्मा जी के नासिका केंद्र से निकलकर विराट रूप धारण करके छलांग लगाई, आगे पैर दोनों और उसके बीच में मस्तक आगे, ऐसे जब कूदते हैं, ऐसे आजकल गोताखार लोग भी आजकल ओलंपिक में भी ऐसे ही पहले हाथ से लेकर के चलते हैं, गिरते हैं ऊपर से, ऐसे बराहदेव जी अपने थुथुन को, मुख को अपने पैरों के नीचे लेकर के ऊपर से एकदम कूदे गोलाकार, और कूद करके एकदम कहाँ चले गए, सूंघ करके जहाँ पर रसातल में पृथ्वी जी, और उनको उद्धार करके ले आए। कैसे उद्धार करके ले आए, कैसे उद्धार किया, मानो अपने मुख के निकट पृथ्वी देवी को, लक्ष्मी पृथ्वी ये भू देवी हैं, उनको रख करके ले आए, बड़े प्यार के साथ ले करके आए और उसके स्थान पर रख दिया। यहां पर हाथों से जरूर स्पर्श किया होगा और लेकर के पृथ्वी ने उनको प्रणाम भी किया होगा, और लेकर के अपने दांतों पर रख करके लेकर के उनकी धुरी पर रख दिया। नरकासुर उसी समय उसका जन्म हुआ, परिरंभेण परिरंभेण उनके पसीने से पृथ्वी पर वो नरकासुर की उत्पत्ति हुई। तो बरादेव जी भी उनको स्पर्श किया, अपने चरणों से भी स्पर्श किया, हाथों से भी स्पर्श किया, यहाँ तक कि अपने मुखारबिंद से भी उनको स्पर्श किया, मानो चुंबन कर रहे हो, किंतु उस समय में वो धन्य नहीं हुई। धन्य कब हुई, आज धन्य हो रहे, इसलिए कह रहे हैं ये सब चीजें। इसके बाद में कह रहे हैं अनादि काल से पृथ्वी चली आ रही है। और भगवान की विभूतियां, विभूतियां जैसे कौन विभूति, शंकर जी विभूति हैं, जितने तेजस्वी लोग हैं वो सब भगवान की विभूतियां हैं, अग्नि भी विभूति है, इंद्र भी विभूति है, ये सब चीजें विभूतियां हैं। और उनके भक्त लोग भी, भगवान के अवतार भी पृथ्वी पर आए, बराजी भी उनका स्पर्श किया, पृथ्वी जी उस समय धन्य हो गई। अब तुलना मूलक दृष्टि से कर रहे हैं, किंतु आज जैसे धन्य हुई पहले धन्य नहीं हुई। धन्य माने उसके, जैसे मैंने पहले व्याख्या किया, धन से धन्य या धन, जिसके पास में धन है वह धन्य है। धन बहुत प्रकार का, जिसमें धर्म अथवा भक्ति धर्म, और भक्ति धर्म में प्रेम धर्म जिसको है वो सर्वोत्तम धनी है। प्रेम धन बिना दस्त दरिद्र जीवन, जिसको प्रेम नहीं है भगवान के चरणों में उनका जीवन धन्य है। तो किसका प्रेम है, उत्तम अधिकारी होंगे तो उनको प्रेम होता है। मध्यम अधिकारी कुछ खोज पाता है, किंतु असल में यह होता है उत्तम अधिकारी को, इसके पहले नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं जिसको प्रेमा भक्ति है वो धन्य है। भक्ति ही धर्म है, धर्म इष्टम धनम पुंसाम धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्ता। जिसको भगवान की भक्ति है, ये भागवत का है श्लोक, जिसको भक्ति है वही परम धनी है, और जिसको भक्ति नहीं है वो पशु के समान है। धर्म नहीं ना पशु भी समान है। विशेष करके प्रेम भक्ति वाले व्यक्ति ही धन्य है। क्यों धन्य है, जिनको प्रेम नहीं है वो कृष्ण को नहीं समझ सकते, नहीं समझे। विशेष करके प्रेम में भी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होगा तो कृष्ण को अधिकतर समझ सकेंगे। ऐसे लोग धन्य हैं जो कृष्ण के इस प्रेम को अनुराग को समझ करके कृष्ण की के प्रति प्रेमा भक्ति उनकी सेवा करते हैं। आज ही धन्य किस लिए, जितने भगवान के अवतार हैं समस्त प्रकार के अवतारों में कृष्ण सबके अवतारी हैं, और कृष्ण का जो रूप है वो अपना असली रूप मूल रूप क्या है, कैसो रूप। इस कृष्ण के किशोर रूप, विशेष करके श्रीमती राधिका के साथ में जो कृष्ण का किशोर रूप है, इसकी आराधना करने वाले भक्त भी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। तो मालूम होता है कि आज राधा कृष्ण की उपासना करने वाली ये पृथ्वी जी आज धन्य हुई है, पहले इनको प्रेमा भक्ति उस रूप में नहीं थी, आज हुई है। कैसे, गोवर्धन के निकट, गोवर्धन क्या है, पृथ्वी के ही अंग हैं, बल्कि पृथ्वी के बस्तक्षल हैं, पृथ्वी देवी के। राधा कुंड श्याम कुंड पृथ्वी के नेत्र हैं। आज उस पहाड़ गोवर्धन पर्वत के ऊपर में कृष्ण अपने चरणों को रख रहे हैं। गोवर्धन के कुंजों में, वृंदावन के कुंजों में कृष्ण विश्राम करते हैं, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हैं, गोपालों के साथ में, गायों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। इसलिए आज ही ये पृथ्वी को ये अवसर मिला, इसके पहले कहीं नहीं मिला। कुंज में प्रवेश करना माने क्या, पृथ्वी के ऊपर ही तो है, गोवर्धन पर्वत है, ये पृथ्वी के ही अंग हैं। राधा कुंड श्याम कुंड में उनकी जितनी क्रीड़ाएं होती हैं वो पृथ्वी पर ही क्रीड़ाएं हैं। इसलिए आज ही मानो ये पृथ्वी जी ये धन्य हुई हैं, क्योंकि आज उनको प्रेमा भक्ति हुई है। यदि कहो रामचंद्र तो आए थे, उन्होंने पृथ्वी पर अपना चरण धारण किया और उस पर लीलाएं की, कि वो ठीक है दंडकारण्य में गए अपने पिता की प्रतिज्ञा रखने के लिए, राज्य को छोड़ दिया, सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वन में प्रवेश, खड़ाऊं और जूते नहीं लिए, छत्र छत्री नहीं ली, खाली पैर चले। वहां से गंगा को पार करके केवट ने उनको पहले ही चरण धो लिया, कठौती में पानी भर करके लाया। ये कहीं ये कठौती यदि यदि नारी बन गई तो नौका जरूर बन जाएगी, इसलिए कठौती में हम परीक्षा कर लें कि कठौती नारी बनती है कि नहीं। इसलिए कठौती में पानी भर करके ले आया और मल मल करके चरण धोया, कुछ रहने नहीं दिया और चरण धो करके फिर नाव में बैठाया। उसके बाद में चित्रकूट आए, चित्रकूट दिन में कुछ दिन रहे, इसके बाद दंडकारण्य में गए। वहां जाने पर सीता जी का अपहरण हो गया। अब वहां से दुखी होकर के चल रहे लक्ष्मण जी उनके साथ में थे, हार सीते करते हुए विलाप कर रहे हैं। पहले तो दुखी थे, किस लिए? राज्य इत्यादि सब छोड़ करके वनवास के रूप में सीता जी को चरण खाली पैर चलते हुए देख रहे हैं, उनको दुख होगा कि नहीं दुख होगा? अपने नहीं तो चले और सीता जी भी उनके साथ में चल रही हैं, और कभी कंकड़ चुभते होंगे, पत्थर चुभते होंगे, थक जाती होंगी तो क्या करेंगे, दुखी नहीं होंगे? ऊपर से तो प्रेम दिखलाते हैं किंतु दुखी रहेंगे। और दंडकारण्य में सीता जी की चोरी होने के बाद में किष्किंधा आने तक और किष्किंधा के बाद में सारी सेना के साथ में समुद्र को पार कर लंका में गए और इतना युद्ध किया, खाली पैर किया, और इसके बाद में खाली पैर नहीं रहा, इसके बाद में क्या, विमान पर चढ़ करके अयोध्या आकर के राज सिंहासन में लिया, जूती पहन लिया, अब जब चलेंगे तो जूती पहन कर। तो इसमें रामचंद्र जी के चरणों का पृथ्वी ने स्पर्श पाया, किंतु पृथ्वी जी जरा दुखी होंगे, आज हमारे आराध्य देव बड़े दुखी होकर के जा रहे हैं। सौभाग्य तो उनका है जो रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श मिला, बात तो ठीक है, किंतु कुछ पृथ्वी जी दुखी हो रही होंगी, आज हमारे आराध्य देव बड़े दुखी। और उस राम के, वराह देव के और समस्त अवतारों के मूल अवतारी स्वयं कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, वो भी किशोर अवस्था में, जिस समय में अभिसार कर रहे हैं और उनके चरणों में कुमकुम लगा हो, और कुमकुम जब सवेरे जब वो घर में लौट रहे हों, उस कुमकुम के साथ में चरणों का स्पर्श पृथ्वी ने किया, उनको रोमांच हो आया। कैसे रोमांच हो आया? रोमांच आया मानो सब नई नई खोपलें निकल गई घासों, ये पृथ्वी का रोमांच। और हंसने मुस्कुराने लगी, मुस्कुराया कैसे? फूल खिले और आंखों से आंसू बहने लगे, माने नदियों से झरनों से, आज पृथ्वी धन्य हो गई, आज कृष्ण का वह चरण कमल जो कुमकुम से भरा हुआ, ये कुमकुम कहां से आया? गोपियों के सियंगों से, और उसके द्वारा ये इस पर पृथ्वी पर लगाया, पृथ्वी पर ही आज हमारा किशोर कृष्ण गोपियों के साथ में संयुक्त कुमकुम के साथ आज पृथ्वी पर अपना चरण कमल रखा, कैसा धन्य हुआ होगा हो पृथ्वी, आज तक ऐसा कभी उसको सौभाग्य नहीं हुआ पृथ्वी। इसलिए कहते हैं धन्य धन्य यम अद्य धरणी तृण विरुधस्तत, और कह रहे हैं कृष्ण का अपना रूप किशोर रूप है। कृष्ण का रूप जो है अपना क्या है? नव किशोर, नटवर, गोपवेश, अब यही रूप उनका मूल है, किंतु ये होने पर भी उसमें बाल्यावस्था सी किसी को दिखती है कुछ दिनों के लिए, उसी में पौगंड अवस्था दिखती है और उसी में कुछ जुआ अवस्था भी दिखती है, किंतु मूल रूप कृष्ण का भक्त लोग इसी रूप की आराधना करते हैं और कृष्ण नित्य रूप में इसी रूप में रहते हैं। आज पृथ्वी देवी को स्वयं भगवान सबके अवतारी जो कृष्ण हैं वो भी परम रसिक हैं, ऐसे रस के समुद्र हैं, ऐसे कृष्णचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करने का ही वो भी गोपियों के अंगों के कुमकुम के साथ में ये मिला, ये सौभाग्य आज तक पृथ्वी को नहीं, इसलिए मानो आज आज ही पृथ्वी ये धन्य। वो भी कैसा, अथवा अथवा कह रहे हैं त्रीण विरुद्ध तत् पाद स्पर्शो, इनके लिए पाद स्पर्श बतलाया क्योंकि छोटे छोटे हैं, इस पर चल सकते हैं, कृष्ण गोचारण करने के समय में चल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि कृष्ण की कृष्ण के चरण को स्पर्श करने की अपेक्षा गोपियाँ और उनमें जो सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधिका चंद्रावली इत्यादि हैं, ललिता विशाखा, इनके चरणों के स्पर्श से और भी धन्य हैं। अन्य अवतारों में ये सब संभव है क्यों, जिनके चरणों का स्पर्श स्वयं कृष्ण करते हैं और क्या कहते हैं, मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लव, कृष्ण स्वयं जिनके चरण के स्पर्श से तो और सब धन्य हो रहे हैं और कृष्ण स्वयं जिनके चरणों को स्पर्श करके धन्य हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं पद स्पर्शो, पृथ्वी तो उनके चरण के स्पर्श से हो रही है और कृष्ण स्वयं किसके स्पर्श से हो रहे हैं, गोपियों के चरण स्पर्श से अपने को धन्य मानते हैं। वो क्या है, जस्या कदापि वसनोंचलोके नलोत्त धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जो गिंद दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमस्त विश्वानुभू, कृष्ण धन्य हो रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं, किस लिए, राधिका जी का स्पर्श दूर रहे, राधिका जी के अंचल वसन का जो अंचल है उसमें हवा स्पर्श करके धन्य अति धन्य हो गई, हवा उनके उनका गंध का स्पर्श नहीं, उनके वसन के अंचल का गंध जो कि राधा जी के अंगों से स्पर्श होने से वो सुगंधित हो रहा है, उसको गंध को पौन लेकर के वो कृतार्थ हो गया और कृतार्थ के फिर आगे बढ़ा, कृष्ण को स्पर्श किया राधा कुंड का पानी स्पर्श करते हुए और भी सुशीतल और सुसंगित हो और कृष्ण के अंगों में लगा, धन्याति धन्य पवन न कृतार्थ मान, अपने को कृतार्थ, आज हमारा जीवन राधिका जी और गोपियां कैसी हैं, इसलिए वो करें आज कृष्ण स्वयं उनका पद स्पर्श करते हैं, अपनी मुकुट मुकुट माने वो मोर पंख और अपनी बंसी उनके चरणों में रख रहे हैं, कहे आज से ऐसा नहीं करूंगा, आज तो हमें क्षमा कर दो, हम अपना सीर तुम्हारे चरण, जिसको जयदेव जी नहीं लिख सके कोई भी नहीं लिख सका, जिसको रूप सनातन इत्यादि लिख सकते हैं दूसरा नहीं लिख सकता, इसलिए पद स्पर्श का ये सनातन गोस्वामी ने नया अर्थ दिया, पृथ्वी तो धन्य हो रही है किंतु आज जिनके चरणों को धन स्पर्श करके कृष्ण धन्य मान रहे हैं उनके भी चरण को ये स्पर्श कर रही है, ये इसके अंतर्भाव्य इसका अर्थ है। ध्रुमलता कर जा में मृष्टा, और पृथ्वी तो धन्य है, आज पृथ्वी के ध्रुम कौन सा ध्रुम इत्यादि, जैसे श्रृंगार भट्ट, भांडीर भट्ट, बंसी भट्ट, कौन जिस पर चढ़ करके कदम बटे इत्यादि वृक्ष कैसे हैं, वृंदावन के पेड़ ऐसे ही है सब वृक्ष, बचपन में पौगंड अवस्था में कृष्ण पेड़ों पर भी चढ़ते थे अपने सखाओं के साथ और तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, भोजन भी उसी पेड़ों की डालियों में लटका देते हैं, जिसके जिसकी डालियां कृष्ण के भोजन को वहन करती हैं जिस पर लटकाते हैं, जिसकी छाया में कृष्ण खेलते हों, सखाओं के साथ से क्रीड़ाएँ करते हैं, डालियों पर चढ़कर यमुना को डाली के ऊपर से ही पार कर जाते हैं पुल से दौड़ते हुए, इस तरह से जो क्रीड़ाएँ करते हैं, जिस क्रीड़ा के अंदर में, भांडीपन के अंदर में नंद बाबा जब कृष्ण को लेकर के गोदी में जा रहे हैं और उनकी गोदी से कृष्ण की, कृष्ण राधा जी की गोदी में आ गए, वन बड़ा सुहावना, मेघ आकाश में गर्जन कर रहे हों, काले काले मेघ, उसकी घटाओं से वो वन भी काला हो गया और काले पेड़ और काले पत्तियां और भी काला हो गया। उसमें राधा जी कृष्ण को लेकर के अंतरित होकर के भांडीर वन में उपस्थित हुए, वहां पर उनके साथ में उनका विवाह हुआ होगा, ब्रह्मा जी विवाह कर, वहीं पर बंसी बट है जहाँ पर तिरास हुआ, वहीं पर वेणु कूप है जिसे गोपियों के प्यास लगने पर उनकी प्यास बुझाई, अथवा अपवित्र कृष्ण होने पर गोपियों के कहने से वेणु से सब तीर्थों का आवाहन करके और उसमें स्नान किया, ये सब लीलाएं जो कहाँ हुई, ये सब पेड़ों के अंदर सब प्रकार की लीलाएं करते हैं, किंतु पेड़ों जब किशोर अवस्था में आ गए अब पेड़ पर नहीं करेंगे, अब अधिक बालपन में गोपियों के वस्त्रों को लेकर के चोरी, बालपन की ये बात है, बालकपन या पौगंड की, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए, बच्चे सब पेड़ पर चढ़ते हैं, आप लोग चढ़ेंगे, आप लोग तो युवा अवस्था है, जरूरत है चढ़ने की या यही चढ़ सकेंगे, बाल्यावस्था में कुछ चढ़ सकते, तो इसलिए कह रहे हैं दुर्मलता कर जा भी मृष्टा, बड़े पेड़ों पर जिस पर चढ़ नहीं सकते, आज पृथ्वी के ये धन्य ये हैं ध्रुम और लताएं, पेड़ और लताएं, इसलिए कह रहे हैं यदि किसी मैया के सामने, बाप के सामने उसके बेटी की प्रशंसा की जाए, वाह ये बेटा बहुत सुंदर है, लड़की बड़ी सुंदरी रूपवती और गुणवती है, और उसको प्यार करके उसको आशीर्वाद दे दें या उसको गोदी में लेकर के चुंबन करें, उसको आशीर्वाद दें, उसकी प्रशंसा करें, उसको मिठाई दें, मैया और बाप उसके कृतार्थ हो जाते हैं, तो ये पेड़ों की कृतार्थता से पृथ्वी यहाँ पर कृतार्थ हो रही है, ये पृथ्वी जो धन्य है, जो प्रसंग उठाया ये अप्रसंगिक नहीं पौ की प्रसंग में है, पेड़ों की भी जो प्रशंसा कर रहे हैं, आज पेड़ भी धन्य है, जिस पर बलपन पौगंड अवस्था में पेड़ों पर चढ़ते थे वो भी ऐसे नहीं, गोपियों के वस्त्र लेकर के चढ़ रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं किस लिए, बंसी बजाते हैं कदम बटेर पर, राधे राधे नाम उच्चारण करते हैं, गायों को पुकारते हैं, कपिला जमुने किशंगी पीताम्बरी धवली ये सब करते हैं, श्यामरी ये सब गायों को पुकारते हैं, जिस समय पुकारते हैं वो पेड़ धरने नहीं होगा, पैरों का तो स्पर्श जरूर होंगे किंतु वो पहले में ले आए, दूसरे में कह रहे हैं कर्जा भी मृष्टा, करों के द्वारा उनका स्पर्श कर, लताएं फूल से भरी हुई है गोवर्धन के निकट में कुसुम सरोवर, तरह तरह के कुसुम फूल खिले हुए हैं, कृष्ण उनको तोड़ रहे हैं, राधा जी के रास के अंतर ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण उनको खोज रहे हैं, खोजने मिलने पर उन्होंने उनके अपने हाथों से श्रृंगार किया, पीछे की गोपियों ने देखा जी यहाँ पर कुछ फूल गिरे हुए हैं, फूल गिरे, यहाँ पर फूल कैसे गिरेगा, देखा जैसे ये दोनों पैर यहाँ आकर के समाप्त हो गए हैं और ये पैर कुछ कृष्ण का अधिक दब गया है, वो रमणी का पैर दिखना नहीं, उन्होंने अनुमान किया कि उसको ले लिया गोदी में, थोड़ी देर के बाद देखा जी यहाँ पर फूल गिरे हैं, तो उन्होंने देखा जैसे उनका चरण कृष्ण का आधा पंजा के, और ऐसे मालूम है कि चरणों के अग्रभाग में बल दे करके पेड़ की किसी डाल को, लताओं की किसी डाल को पुष्प चयन कर, क्योंकि ऊपर का फूल तो बाकी है जो स्पर्श नहीं कर, नीचे वाला नहीं है, और देखा यहाँ पर फूल गिरा है, आज यहीं पर श्रृंगार किया। उस समय में कर रहे हैं उत्प्रेक्षा करके उन लताओं को जिनका फूल चयन कर रहे हैं, फूल तो ऐसे तोड़ा जाता है दोनों हाथों को लेकर के, इसलिए मालूम होता है जो आज लता को अर्थात प्रेयसी को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे उनको मालूम। क्यों? इसलिए तो उन्होंने ध्रुम और लताओं का जन्म लिया है, इसीलिए यह इसी लाभ के लिए, यह हमें लाभ मिलेगा जो हमें स्पर्श करेंगे। प्रिया तो हो नहीं सकता, हमारा सौभाग्य इतना नहीं। यदि गाय बन जाऊं तो कृष्ण अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, लता बन जाऊंगा तो भी उसमें फूल चयन करेंगे, उनके स्पर्श से मैं धन्य हो जाऊंगा, इसलिए वहां तो थे। इसमें भी प्रणय रस का को बतला रहे हैं, जैसे हाथ से किसी प्रियतमा को कोई स्पर्श करता है, ऐसे इनको स्पर्श कर रहे हैं। कर्जाभिमृष्टा, बहुत से इसमें श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है सबका, इसको वर्णन के अंतर में इसको ले लो जी कि कैसे स्पर्श करते हैं। गोविंद लीलामृत इत्यादि ग्रंथों में स्पर्श करने का जो है, कैसे गोपियों को स्पर्श करते हैं तो वो पुलकित हो जाती हैं। इसे कृष्ण जब फूल चयन करते हैं तो इनको भी और भी फूल खिल जाते हैं, और भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। कर्जाभिमृष्टा, नद्यो अद्रय खग मृगा सदयावलोकई। अनंतर पद स्पर्श का प्राधान्य होने पर भी हाथों से स्पर्श करना भी कम नहीं बल्कि और अधिक है। हाथों से स्पर्श में प्रेम अधिक हुआ, इसलिए इनका उस पृथ्वी से कम नहीं बल्कि कुछ उत्तरोत्तर वर्धित हो रहा है। अनंतर विचित्र मधुर लीला से परायण गाथियों का स्पर्श करते हैं कौ, कितना लोरी उनकी ऐसे संभालते हैं, गायें ऐसे कर देती हैं, उनके पीठ खुच बछड़ों से गले से लग जाते हैं, ये सब और भी धन्य है। सचराचर गोपों का को तो सौभाग्य का वर्णन बहुत कठिन है, इनका तो ऐसा है खेल में सब समय खाने पीने रहने चलने, पैरों का भी स्पर्श होता है कृष्ण का, कैसे जब वो सखा लोग कृष्ण को वहन करके ले जा रहे हैं खेल में हारने के बाद में, उनके चरणों का भी स्पर्श हो रहा है, हाथों का भी स्पर्श हो रहा है, और कृष्ण उनको जबकि लेकर के जा रहे हैं तो उनके चरण भी कृष्ण से स्पर्श हो रहे हैं, उनका भी हाथों से भी स्पर्श हो रहा है, एक साथ में खाते हैं पीते हैं सोते हैं क्रीड़ा करते हैं, इस तरह से उनका और भी सौभाग्य। पृथ्वी से इतना नहीं बातचीत करना, इतना नहीं करते हैं, पेड़ों पर भी पैर रख दिया या उनको स्पर्श कर दिया बस इतना, और इनसे सभी कुछ आदान प्रदान सखाओं से होता है, ये सब पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ये पृथ्वी का ही एक तरह से पृथ्वी के साथ। बीच में सखाओं का वर्णन नहीं किया, गायों का वर्णन नहीं कर करके एकदम आए कहां, नद्यो अद्रय खग मृगा सदयावलोक। सदयावलोक मैंने क्या, दयालुता पूर्वक देखना सदयावलोक, दया माने प्रेम भी होता है, दया माने प्रेम, कैसे कैसे प्रेम होता है, ये कागज इसमें रखा था कहाँ गया, कैसे अक्षणतांग फलमिदम परम मुख्या शक्का पशून अनुबेशयतो रुपयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेनु जुष्टम जैवानिपीतम अनुरक्त कटाक्ष जो लोग इसका दर्शन कृष्ण का नहीं किया, जो कृष्ण को उन्होंने एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं बलदेव इत्यादि के साथ में जाते हुए नहीं देखा, विशेष करके पीछे जो जाने वाले हैं बंसी बजाते हुए, और जो दयापूर्वक प्रेम पूर्वक जो गोपियों की तरफ में अपने दृष्टि से उनके तरफ में देखते हैं, और गोपियां भी अपने नैनों से जिनकी आरती उतारती हैं। फुल्लेंदी वरकांत मिंदु वदनम बरहावतंसम प्रियम सीबत्सांक मुदार परम सीतांबरम सुंदरम नैनोत्पलार्चित तनु नैन उत्पल अर्चित नैनोत्पलार्चित तनु गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगम भूता। गोपियां अपने नैनों से नैन रूपी उत्पल से कमल से उनकी आरती उतार रही हैं, और कृष्ण क्या करते हैं अपनी दृष्टि भंगी से देख रहे हैं। प्रीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षय कृष्ण यहाँ पर दया माने प्रेम, प्रेम पूर्वक उनकी तरफ में निहारते हैं। उस निहारने को यदि किसी ने देखा, विशेष करके राधिका जी के साथ में कृष्ण को यदि देखा, या कृष्ण को देखा जो राधा जी के तरफ में देख रही हैं, या कृष्ण उनके तरफ में देख रही हैं, जैसे कृष्ण गोचारण को जा रहे हैं, जाते 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 नंद बाबा यशोदा जी भी चले जा रहे हैं। यशोदा जी को किसी प्रकार से मनाया,